श्री कृष्ण बलराम की जय।
तो आज 24 अगस्त है 2011। पिछले साल इस दिन श्री जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा देवी का स्वागत किया गया था, और पिछले साल इस दिन बलराम जयंती का दिन था, और दो दिन बाद में हमारे हॉस्पिस का उद्घाटन हुआ था। तो आज ही उस शुभ दिन पर हम लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं। जन्माष्टमी का जो उत्सव है ये बधाइयों का उत्सव है, आनंद का उत्सव है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, पुकारो पुकारो, हाँ, नाम की गूंज उठनी चाहिए, धूम मचनी चाहिए। जन्माष्टमी यानी भगवान का अवतार दिन है, भगवान अवतार लेते हैं, आविर्भाव लेते हैं। तो ये दिन पे हम लोग याद करते हैं भगवान ने कैसे अवतार लिया, कितने दयालु है भगवान हम जैसे पापियों के लिए, उद्धार करने के लिए, हमारा इस विश्व के हर बद्ध जीव को तारने के लिए भगवान गौलोक मंडल छोड़कर पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। कोई जरूरत नहीं है उनको यहाँ पर आने की, लेकिन हमारे लिए हमारी करुणावश प्रेमवश भगवान अवतार लेते हैं। आप सब जानते हैं भूमि त्रस्त होकर कंस जैसे भयंकर अनेक दानवों को कष्ट पाकर वो गाय बनकर जाती है ब्रह्मा जी के पास, और अपना रुदन का व्यथा बताती है। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के शिल सागर पर जाते हैं, वहां से पुकारते हैं, टेर लगाते हैं। भगवान संदेश देते हैं कि हम आएंगे, सभी देवताओं को आदेश देते हैं कि यदुकुल में और नंदकुल में सब जन्म लीजिए। श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। इस तरह से आगे की कहानी, देवताओं के भगवान के आदेश के अनुसार देवता सब लोग अपने अपने जगह पर जन्म लेते हैं। आगे जाकर नारद मुनि भी समझाते हैं कंस को किस तरह से देवता लोग सब जगह पर जन्म ले चुके हैं, यदुकुल में, गोकुल में, सब जगह पर भगवान विष्णु के कार्य को संपन्न करने के लिए। कुछ लोग समझते हैं कि विष्णु के 10 अवतारों में से कृष्ण हैं, लेकिन ये बात शास्त्र से सम्मत नहीं है। भगवान के 10 अवतारों में, विष्णु के 10 अवतारों में बलराम जी आते हैं, और कृष्ण भगवान का कहीं भी नाम नहीं है, क्योंकि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार नहीं है, विष्णु कृष्ण के अवतार है। एतेच अंश कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एकेल कृष्ण आर सब भृत्य, ये सब भगवान के अंश हैं। जितने विष्णु हैं वो भगवान के अंश हैं, और विष्णु जो उसको पुरुष अवतार कहा गया है, कारण उदकशाही विष्णु, गर्भ उदकशाही विष्णु, क्षीर उदकशाही विष्णु, परमात्मा, ये सब विष्णु के अवतार हैं, ये सब कृष्ण भगवान से आते हैं। एतेच कला, हाँ, जितने भी कला है, जितना भी विस्तार है, सब भगवान कृष्ण के हैं। कृष्ण ये जो है ओरिजिनल आदि पुरुष हैं, गोविंदम आदि पुरुषम, उनके पीछे कोई नहीं है, सब उनके आगे हैं, उनके अवतार हैं। इसलिए भगवान कृष्ण को विष्णु के दशम अवतार में से एक नहीं मानना चाहिए, गलत बात है। तो फिर यथावकाश देवकर का विवाह होने जाता है, संपन्न हो जाता है वसुदेव से, शूरसेन का पुत्र वसुदेव, देवक की पुत्री देवकी, इनका बहुत सुंदर विवाह होता है। ये कजिन ब्रदर होते हैं कंस और देवकी, हाँ, कंस उग्रसेन के पुत्र होते हैं, और देवक की पुत्री देवकी होती है, उग्रसेन और देवक महाराज चचेरे भाई हैं। तो कंस के देवकी के इस विवाह में जब बारात निकलती है तो कंस जो है वो सारथी कर रहा है, सारथी बना बन के अपने बहन को ससुराल ले जा रहा है बड़े प्रेम से। हाँ, अभी कंस का इतिहास क्या है कि कंस इतना महान योद्धा था कि उसने विश्व भर के जितने भी महान महान दैत्य थे उन सबको आह्वान दे दे के, चैलेंज दे दे के परास्त कर दिया था। जो लोग नहीं माने उनको मार दिया गया, जो लोग माने उनसे टैक्स वसूल करने लगा, वो टैक्स वसूल करके दोस्ती बनाया। तो ये सब जितने भी राक्षस थे, अघासुर, बकासुर, केशी, अरिष्टासुर, तृणावर्त, ये पुतना बकासुर की बहन, हाँ शक्टासुर, ऐसे भयंकर राक्षस थे, इनका वर्णन इस गर्ग संहिता में आता है, कंस का पराक्रम, और वो कितने भयंकर थे। उसके पास में 8 भाई थे और वो भी महान योद्धा थे, चाणूर मुष्टिक, हाँ ऐसे भयंकर योद्धा थे उनके पास, विश्व भर में अजिंक्य थे वो। तो वो कंस जो है वो सब इतना बलशाली था कि सबको उसने वश करके वो चक्रवर्ती सम्राट बन गया था। पिता उग्रसेन की बात भी न मानता नहीं था। तो राक्षस जो होते हैं, जब तक उनका इंद्रिय भोग ठीक रहता है, उनके मन जैसे चलती रहती है, तब तक तो वो दोस्ती प्रेम भाईचारा बहन भाई का प्रेम सब चलते रहता है। जब उनके स्वार्थ में बाधा आती है तो सब रिश्ते खत्म हो जाते हैं। उनका रिश्ता केवल खुद से होता है, खुद के भोग से होता है, खुद के तृप्ति से होता है, बाकी सब नाते छोटे होते हैं उनके लिए। सब तक बढ़िया चल रहा है सब कुछ, और सारथी बन के चला रहा है घोड़ा, आकाशवाणी होती है, मोर कम्स, तो जिसका रथ हाक रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा वध करने वाला है, बस खत्म, सब प्रेम खत्म, सब खत्म। एक मिनट में वो तलवार निकालता है, एक हाथ से बहन के बाल पकड़ता है और वो एकदम मारने को तैयार हो जाता है एक ही झटके में। हाँ कहाँ गया वो प्रेम, सारथी मतलब शूद्र बनकर वो रथ चला रहे हैं, इतना प्रेम दिखा रहे हैं बहन पर, एक क्षण में जब मृत्यु की बात होती है खत्म। तो वो इतने झटके से तलवार निकालकर बाल पकड़ के मारने जाता, तुरंत वसुदेव उसका हाथ पकड़ता है। वसुदेव के जो व्यक्तिमत्व जो है, इतना बढ़िया व्यक्तिमत्व है, कितना भयंकर प्रसंग है, देखो बेचारे की शादी हो रही है, हाँ वो जानता है कि कंस बहुत बलवान है, उसके सामने वो टिक नहीं पाएगा युद्ध में खड़ा रहने से, वैसे भी वो उसका बीवी का भाई है, वो युद्ध करना भी नहीं चाहता है। तो ऐसे मौके के समय पे किसी का भी चित्त विचलित हो सकता है, हैं? लेकिन वसुदेव बड़े शांत दिमाग से काम लेते हैं, उसको समझाते हैं कि मृत्यु निश्चित है, आत्मा अमर है, आप जैसे ज्ञानी व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को, ज्ञानी और बलशाली व्यक्ति को इसके लिए खेद नहीं करना चाहिए। लेकिन सारी ये जो फिलॉसफी है ये कंस के पल्ले नहीं पड़ती, वो फिर भी तलवार उठाए खड़ा है, एक ही बात पे तलवार नीचे करता है, वो कहता है कि कोई चिंता मत करो, आपको जो भय है मेरी बीवी के 8वें बालक से है, मैं वादा करता हूं कि जैसे ही बालक आपको मेरी बीवी से, आपके बहन से कोई परेशानी नहीं है, कोई संकट नहीं है, तो इसे क्यों मार रहे हो आप, मैं वादा करता हूं कि आपको जितने बच्चे होंगे सबको आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। बड़ा डेरिंग से वचन दिया उसने। हाँ उस समय अपनी पत्नी की जिंदगी बचाने के लिए उसने बहुत, क्या कहते हैं उसको, चैलेंज से वचन दिया उसको। तो तुरंत तलवार नीचे आ गई, चलो कोई बात नहीं मान लिया, जाओ ठीक है, पहला बालक जन्म लेता है। अभी वसुदेव का पर्सनैलिटी देखो, वसुदेव का चरित्र देखो, कितना श्रेष्ठ चरित्र है उसका, जिस बालक को जन्म दिया उसने सीधे लेकर वो चला गया कंस के पास। एक इंग्लिश में वर्ड है, इसका नाम है इंटीग्रिटी, इसके हिंदी में कहते हैं उसूल। उसूल का मतलब क्या होता है, जान भी जाएगी तो भी वो उसके वचन को पालन नहीं छोड़ेगा, वो सत्यवचनी व्यक्ति जो होता है, वो मरने के लिए भी आएगा तो भी अपना वचन नहीं छोड़ेगा, वचन निभाएगा। रघुकुल का भी ऐसा ही वर्णन है, रघुकुल की ऐसी रीत चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, मर जाएंगे वो लोग लेकिन अपने वचन को जुटा नहीं साबित होने देंगे, वैसे वसुदेव है। वसुदेव के इस चरित्र को देखकर कंस प्रभावित हो गया, अरे क्या व्यक्ति है, देखो कौन लेके आएगा अपने बालक को, लेके आया, नाम क्या है इसका, कीर्तिमान आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो कंस का भी, कंस प्रभावित हो गया। पवित्रता ऐसी प्रभावित प्रभावी करने वाली होती है, पवित्रता से प्रभाव होता ही है कभी भी। प्रभुपाद जी कहते थे प्यूरिटी इज द फोर्स, उनके अंदर वो प्यूरिटी थी इसलिए उनके वचन से म्लेच्छ यवन लोग भी भक्त बन गए, क्योंकि वाणी में इतनी शक्ति, इतना प्रभाव था, वैसे ही पवित्रता है वसुदेव की। कंस भी पिघल गया, बोले कोई बात नहीं, ये तो पहला बालक है, मुझे इससे भय नहीं है, जाओ ले जाओ, कोई बात नहीं जाओ, बड़ा उसने गर्व से कहा उसको। तो फिर नारद मुनि आए, नारद मुनि ने कहा देखो ऐसा है कि देवताओं का हर काम बहुत उल्टा सुलटा होता है, ये गिनती कहां से करते हैं किसको पता, 8, 7, 6, 5, 4 गिनती करते हैं कि 1, 2, 3, 4 गिनती करते हैं, पता नहीं है। ले लो ले लो एक कमल का पंख फूल पकड़ो अपने हाथ में, हाँ सब गोल पंखुड़ियां उसकी, एक पंखुड़ी को एक नंबर दे दो और दाहिने हाथ से गिनती शुरू करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब इसको छोड़ दो, किसी और को एक नंबर दे दो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब बताओ कौन सा पहला है और कौन सा लास्ट है, सब पहले है और सब लास्ट है, जहां से गिनती शुरू करोगे वो पहला है, जहां गिनती खत्म होती है वो लास्ट है। तो आप कैसे कह सकते हो कि आठवां वाला कौन सा है, कहां से गिनती करोगे, मूर्ख मत बनो। नारद मुनि क्यों कर रहे हैं, अरे तो परम भगवान के भक्त है, इतना अत्याचार करने के लिए प्रवृत्त क्यों कर रहे हैं उसको नारद मुनि कभी भी गलत काम नहीं करते, हाँ वो आचार्य हैं, भगवान के परम भक्त हैं, वो भगवान के अवतार को शीघ्र लाना चाहते हैं, वो कंस के पाप के घड़े को भरना चाहते हैं, भराना चाहते हैं और जल्द से जल्द भगवान का अवतार करना चाहते हैं। और वैसे भी ये जो 6 बालक है देवकी के, ये हिरण्यकशिपु के पोते थे, उन्होंने अपराध किया था, बड़ी लंबी कहानी वो, तो हिरण्यकशिपु ने उनको शाप दिया था कि तुम्हें पृथ्वी पर जाकर मनुष्य के मतलब उसके लिए मनुष्य मतलब एकदम ही नहीं होनी और राक्षस है ना, तो मनुष्य के जन्म में हृदय में जाकर गर्भ में जन्म लेकर मरना होगा तुम्हें। तो उनको देवकी ने मतलब उस समय जो देवी थी उन्होंने कहा कि हमारे घर में आपको लेंगे और हमारे घर से आपको आपका उद्धार हो जाएगा, तो उनका वध भी होना ही था, उनको तो बचना था ही नहीं। तो तुरंत इसने माँ बाप को मतलब देवकी वसुदेव को अरेस्ट कर लिया, जेल में डाल दिया और उसके बच्चे को उठाकर पत्थर की शिला पर मारकर कचर कुचल दिया। ये देखकर उस सभा के अंदर हाँ उग्रसेन था ना राजा उस समय, उग्रसेन का पुत्र है ये, मतलब युवराज है ये, उग्रसेन ने आदेश दिया यादवों को अटैक कंस, इसको मारो। तो यादव कुल में और कंस के पक्ष में जितने राक्षस थे और यादव के जितने सैनिक सेनानी थे उसमें राजसभा में युद्ध हो गया, इतना भयंकर युद्ध हो गया कि राजसभा का जमीन पूरा मांस और खून से भर गया। और उसी समय कंस ने पराक्रम करके महापराक्रम करके जितने भी यादव थे उस सबको खत्म कर दिया और अपने पिता को घसीटकर कैद कर लिया, पिता को जेल में डाल दिया, वसुदेव देवकी को जेल डाल दिया और खुद राजा बन गया कीर्तिमान के मरने के बाद। फिर उसके बाद जैसा वादा किया वैसे एक एक बालक को लेकर वसुदेव जी खबर करते हैं और कंस आते हैं और 6 बालकों को पटक पटक कर शिला पर मारते हैं, उसके निशान भी बने रहते हैं, देवकी तड़पती रहती है। हम लोग कहेंगे अरे देवती को पता था कि मेरे हर बालक को मारना है तो प्रेग्नेंट क्यों हो रही है, प्रेग्नेंट होना ही नहीं है, खत्म, ना बालक का वध होगा ना गर्भवती होगी, है ना, कॉमन सेंस है ना। अगर आपको पता है कि आपके होने वाले बालकों को मारा जाएगा तो आप कहेंगे चलो बालक गर्भवती होना ही नहीं चाहिए, क्यों गर्भवती हो रही हो बार बार। देवकी के भी व्यक्तित्व को समझना बहुत जरूरी है, उसको पता था कि उसके 8वें गर्भ के रूप में भगवान का अवतार होगा, भगवान के अवतार को जन्म देने के लिए मतलब भगवान के अवतार को होने के लिए वो निमित्त है, उसकी वो सेवा है, तो उसको अपनी भगवान की सेवा करने के लिए ये सारा कष्ट सहना पड़ रहा है। अगर वो कहेगी मैं गर्भवती होंगी नहीं तो 8वां नंबर भगवान का अवतार होगा ही नहीं, फिर जगत का उद्धार कैसे होगा, देवताओं के तरफ से जो भगवान कार्य करने के लिए आ रहे हैं उनको कैसा कार्य होगा। तो भगवान के सेवा के लिए उसने अपने पेट के बालकों को मरते हुए देखा, कितना कष्ट होता होगा माता को, देखो जब एबॉर्शन भी होता है ना उसको का कभी तो भी कितना दुख होता है माताओं, कई महीने तक दुखी रहते हैं माता जी, हमने कई लोगों को ऐसे सांत्वना दिया हुआ है, कोई किसी का दोष नहीं, कोई आके वध नहीं कर रहा है उनका, कोई कुदरती तरीके से उसका मृत्यु हो रहा है बालक का, तो माता कई महीने तक परेशान रहती है उसी विचार से कि मेरे गर्भ में मैंने 7 महीने 6 महीने 5 महीने उसको बना दिया आसरा दिया और फिर चला गया जीव, दुखी रहते बहुत। तो देवकी के सामने जन्म हो रहा है और उसका सगा भाई जो है उसके आंखों के सामने उसको पटक पटक के कुचल कुचल के मार रहा है, कितना तकलीफ उठाया होगा उसने, लेकिन फिर भी उसने भगवान की सेवा के लिए फिर गर्भवती हुई और सातवीं बार भगवान संकर्षण को गौलोक में आदेश दिया गया, शेष अनंत शेष को। बहुत सुंदर वर्णन है उसका कि वहां से वो बलदेव जी महाराज ताल ध्वज ताल के रथ पर बैठकर गदा धारण करते हुए, बहुत सुंदर उनका वर्णन है, रथ का वर्णन है, उनका सौंदर्य का वर्णन है, उनके अलंकारों का, उनके शक्ति का, उनके भुजाओं का वर्णन, बहुत सुंदर। वहां से निकले वो और वो वैकुंठों को पार करते हुए, गिरिजा नदी को पार करते हुए ब्रह्मांड में प्रवेश किया उन्होंने, जहां पर वामन देव ने पहले छेद किया था, वहां से उनका रथ अंदर आया और वहां से यात्रा करते करते वो फिर देवकी के गर्भ में प्रवेश किया उन्होंने, सातवें गर्भ के रूप में। उसी समय भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि इस गर्भ को आप संकर्षित करो और रोहिणी के गर्भ में स्थित करो। रोहिणी वसुदेव की पत्नी है और रोहिणी को कंस के भय से उसने पहले से ही, क्योंकि विवाह वसुदेव का देवकी से हुआ था, वहां से साप आकाशवाणी हुई थी, तो रोहिणी वैसे सेफ थी, लेकिन उसको आतंक से बचाने के लिए रोहिणी को वसुदेव ने अपने मित्र नंद महाराज के पास गोकुल में भेज दिया। उस समय नंद बाबा को और यशोदा माई को भी पुत्र नहीं हुआ था, वृषभानु महाराज और कीर्ति मैया को भी बालिका बालक कुछ नहीं हुआ था, तो वो लोग बरसाना और नंदगांव छोड़कर जमुना किनारे गोकुल रावल में आकर विराजमान हुए थे। तो ये देखकर उन्होंने अपनी पत्नी को वहां भेज दिया अपने मित्र के साथ सुरक्षा के लिए। रोहिणी गर्भवती थी, तो रोहिणी के गर्भ में, रोहिणी तो बलराम जी की आदि माता है, तो उनके गर्भ में, उनके गर्भ में बलराम जी, जो स्वयं बलराम जी हैं, वो उनके गर्भ में विराजमान थे। और इस गर्भ में संकर्षण महाराज जी, शेष साई, अनंत शेष विराजमान है। तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि आप इस गर्भ को संकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थित करो। तो योग माया ने अपने प्रभाव से इस गर्भ को संकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थापन कर दिया, और शेष जो अनंत शेष हैं, जो संकर्षण के रूप में विराजमान थे, वो बलराम जी में विलीन हो गए और एक ही व्यक्ति रहे, ट्विंस नहीं हो गए, दो बालक नहीं, एक ही बालक। तो जनता के लिए क्या हुआ, अरे सातवां तो बालक का गर्भपात हो गया, पता नहीं क्या हो गया, सातवां गर्भ जो नष्ट हो गया, सब खबर फैल गई सब जगह। कंस को भी आश्चर्य हुआ, अरे ये तो गड़बड़ हो गया मामला। फिर उसके बाद में भगवान ने सबसे पहले वसुदेव के हृदय में प्रकट हो गए। भगवान का जन्म जो है ना, वो हमारा जैसा नहीं होता है, शरीर के संबंध से नहीं होता है, भगवान प्रकट होते हैं। भगवान के जन्म के लिए शरीर का संभोग लेने की आवश्यकता नहीं है, भगवान दिव्य रूप से अवतार लेते हैं। तो पहले वो पूरे ऐश्वर्य के साथ में वसुदेव के शरीर हृदय में प्रकट हो गए। वसुदेव बड़े सुंदर दिखने लगे, तेजमय हो गए, प्रकाशमान हो गए, आभामय हो गए, बड़े सुंदर लगने लगे वो, उनका प्रकाश सब जगह फैलने लगा, क्योंकि परम भगवान श्री कृष्ण उनके हृदय में प्रकट हो गए थे। फिर वहां से भगवान देवकी के हृदय में प्रकट हो गए, देवकी बड़ी सुंदर हो गई, उसके शरीर से प्रभाव प्रकाश निकलने लगा, फिर वो अपने देवकी के हृदय से देवकी के गर्भ में प्रकाशित हो गए और देवकी का गर्भ फिर बढ़ने लगा। और देवकी जहां पर कारागृह में थी, पूरा कारागृह जो था प्रकाशवान हो गया, और देवकी कभी नहीं इतनी सुंदर हो गई। तो कंस समझ गया उसका सौंदर्य और प्रकाश देख करके, मेरा काल जो है इसके पेट में आ गया है, तो बड़ा चिंतित होने लगा, बड़ा परेशान हो गया कि कब इसका जन्म होगा और कब मैं इसको। एक बात ध्यान रखने जैसी है कि कंस की अगर इच्छा थी, इच्छा होती, तो वो गर्भवती का भी वध कर सकता, लेकिन राक्षस होने पर भी ये गर्भपात करना उस समय बड़ा पाप माना जाता था, और कंस ने किसी बालक का गर्भपात नहीं होने दिया, सातवां गर्भ तो संकर्षित किया गया। तो वैसे आप देखेंगे कि रावण या कई ऐसे स्टोरीज हैं, जैसे कि हिरण्यकश्यपु जब तपस्या करने जा रहे थे, तो उसकी पत्नी प्रहलाद के लिए गर्भवती थी, तो देवताओं ने भी कयाधु को मारा नहीं, उस समय कयाधु को अरेस्ट कर लिया और वो वेट करने वाले थे जब उसका जन्म होगा तब बालक का वध किया जाएगा, लेकिन गर्भपात नहीं होने दिया, क्योंकि गर्भपात बहुत भयंकर पाप है। इतना भयंकर पाप है कि पूरे शास्त्र में कहीं भी आप पढ़ेंगे तो गर्भपात का क्या कहते हैं उसको पश्चाताप नहीं है। गर्भपात का एक ही परिणाम है, बार बार अंधकार में रहना, मतलब बार बार माता के गर्भ जाकर गर्भपात होना, स्वयं का होते रहना, ये उसकी परिशिक्षा है। इसका शिक्षा मतलब दंड है उसका। तो फिर यथावकाश भगवान का जन्म का समय आया, उसका वर्णन हम पढ़ना चाहते हैं, इसलिए हमने ये किताब खोल के रखा है। जब भगवान का जन्म का समय आया, क्या समय था वो? श्रावण कृष्ण पक्ष का अष्टमी का दिन था। और भगवान ने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेना तय किया, क्योंकि रोहिणी उनके भाई बलराम जी की माता है, इसलिए आ रहे हैं देवकी के गर्भ से जाने वाले यशोदा के पास, तो रोहिणी को भी आनंद होना चाहिए, इसलिए रोहिणी नक्षत्र में उन्होंने जन्म लेना चाहा। हर्षण योग कहते हैं इस समय को, और वृष लग्न में उनका जन्म हुआ, अष्टमी की तिथि को, आधी रात को, चंद्र उदय के समय में, जबकि पूरे जगत में अंधकार हो रहा था। भगवान कृष्ण जो है चंद्र वर्ष में आ रहे हैं, चंद्र वंश में जन्म ले रहे हैं, राधा रानी जो है सूर्य वंश में आई हुई है। अष्टमी का दिन था तो चंद्र कैसा होना चाहिए? आधा होना चाहिए, लेकिन भगवान को अवतार लेते हुए देखकर चंद्रमा इतने खुश हो गए, अष्टमी के दिन पूरे हो गए पूर्णिमा की तरह। भयंकर वर्षा होने लगी उस समय, इतना सुंदर वर्णन है उस समय क्या क्या हुआ कि सभी दिशाएं निर्मल हो गई। जब हरि का प्राकट्य का समय आया, आकाश स्वच्छ हो गया, सब जगह पर तारे अत्यंत दीप्तिमान हो गए, और नदी और सरोवर के अंदर जल स्वतः ही स्वच्छ हो गए, और जितने भी कुंड थे विश्व में सब कुंड में कमल खिल गए। कमल कभी खिलता है आपके हिसाब से? यस हाँ, कमल को अरविंद बंधु कहा गया है। जब वो सूरज आता है तभी कमल खिलता है, सूरज जाता है तो कमल बंद हो जाता है, ये बीच रात में कमल खिल रहे हैं, याद रखना इस बात को, ये समझना बहुत जरूरी है। भगवान के आने के उपलक्ष में आनंदित होकर बंद कमल जो है वो खिल जाते हैं सब जगह पर, जहां कमल नहीं है वहां कमल उत्पन्न होते हैं, और जहां कमल है वो सब खिल जाते हैं। इस तरह से सभी कुंडों में, सभी सरोवरों में, नदियों में, सब जगह कमल ही कमल खिल गए। उसके बाद में सब जगह पर कमलों पर भ्रमर गुंजार करने लगे, सब जगह शीतल मंद और सुगंधित। वायु का तीन अच्छे गुण हैं, शीतल मंद और सुगंधित। सुगंध कहां से? जहां जहां सुगंधित फूल खिल रहे हैं सब जगह सुगंधित फूल खिल गए, और सुगंधित फूलों से पू केसर जो है वो ऐसे हवा में निकलते हैं, फिर वहां से मंद हवा निकलती है, नदियों के तरफ से जो बाष्प ऊपर आता है ना, नदी के कभी आप गए हो नदी के पास तो हल्का हल्का बाष्प जो है ठंडक पैदा करता है, तो वहां का ठंडक बाष्प का सुगंधित पुकेसर और मंद हवा सबको लेकर बहने लगी। जहां जहां हवा बह रही है मंद और शीतल, शीतल क्यों है? बाष्प की वजह से। सुगंधित क्यों है? पुकेसर की वजह से। और मंद मंद सबको आनंद करने के लिए वो हवा बहने लगी। सुगंध युक्त पराग सब जगह फैलने लगे, और उसके बाद जहां जहां गरीबी थी वहां पर समृद्धि हो गई। हाँ, वो जो क्या कहते हैं उसको, सब धनी राम हो गए ऐसे कहते हैं लोकल भाषा में। हाँ, जो निचल्लू थे वो सब धनी राम हो गए। हाँ, जो भूखे थे वो हलवा पूड़ी खाने लगे सब लोग, ऐसा वर्णन आता है। और सब जगह पर वाद्य बजने लगे, देवता ब्राह्मण पर्वत वृक्ष गांव सब जगह से सामग्री से परिपूर्ण हो गए, सब पेड़ों पर जो उस ऋतु के फल नहीं थे वो भी उत्पन्न हो गए। हाँ, जैसे कि आम मई महीने में आता है, लेकिन उस समय आम पैदा हो गए, सभी सीजन के जितने फल थे, जितने फूल थे, सभी जितने फूल फल थे सभी उस समय प्रकट हो गए अपने अपने पेड़ों पर। और उसके बाद में गायन कला में निपुण जो विद्याधर है, चारण है, यक्ष है, वो सब आकाश में एकत्र हो गए, और मधुर मधुर संगीत में गाने लगे, मधुर नृत्य करने लगे, वाद्य बजाने लगे, गायन करने लगे। देवता लोग स्तोत्र पढ़कर परम पुरुष का स्वागत और गौरव करने लगे। देवलोकों में गंधर्व विद्याधरों ने आनंद मग्न होकर नाच शुरू किया, और प्रमुख प्रमुख देवता जो है पारिजात मंदार मालती के फूल बरसाने लगे। मेघों ने वर्षा करना आरंभ किया, सुंदर जल रोशनी शुरू आरंभ किया, उसमें भगवान का आविर्भाव हुआ। इस तरह से भगवान ने जब अवतार लिया तो जैसे हमारा जन्म होता है वैसे नहीं हुआ, भगवान देवकी के गर्भ से सीधे प्रकट हो गए पूर्ण पुरुष के रूप में, नव यवन 16 वर्ष की आयु वाले, पूरे आभूषणों के साथ, मुकुट के साथ, शंख चक्र पद्म गदा के साथ प्रकाशमान होकर भगवान देवकी के सामने खड़े हो गए। रोते हुए बालक की तरह नहीं आए, पूर्ण ऐश्वर्य के साथ, षड ऐश्वर्य के साथ, सभी अलंकारों के साथ प्रकट हो गए। क्या वर्णन है उनका देखो, सुंदर कौस्तुभ मणि वक्षस्थल पर, रत्नों की माला, पैरों में नुपुर, बाहों में बाजूबंद, ऐसे सब अलंकार पहनकर भगवान उत्पन्न हो गए। मुकुट मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, मकराक मकराक मकराकृति कुंडल जो हिलडुल रहे थे, उनका प्रकाश उनके गालों पर प्रकाशित हो रहा था। सांवले रंग के गाल पर कुंडल का प्रकाश हिल रहा है, उनकी प्रभा जो है सब दिशाओं को व्याप्त कर रही थी। कंठ देश में कमलों की माला शोभा पा रही थी, और उस कमलों की माला पर सब जो मधु पियाने की जो भंवरे हैं वो गुंजन कर रहे थे, गीत गा रहे थे। दिव्य पीताम्बर पहना हुआ था। इस तरह से ऐसा सुंदर स्वरूप को लेकर श्याम सुंदर जी भगवान देवकी के सामने प्रकट हो गए, और देवकी और सुदेव बहुत प्रसन्न हो गए उनको देखकर। लेकिन प्रसन्न होते साथ उनको डर भी लगने लगा, वो कंस आएगा, क्योंकि वास्तविक माता है ना, वो माता हमेशा माता ही होती है। हाँ, अब पुत्र कितना भी बलवान हो गया फिर भी वो पुत्र को छोटा ही समझती है। भगवान स्वरूप प्रकट हो गए सामने उसके, फिर भी वात्सल्य ऐसी वस्तु है कि वो देखकर उनको डर लग रहा है कि अभी कंस आएगा, पता नहीं क्या होगा, युद्ध होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, डर रही है। तो इस तरह से वसुदेव जी भगवान का गौरव करते हैं, देवकी भगवान का गौरव करती है। वसुदेव के और यशोदा और देवकी के प्रेम में अंतर है। देवकी को पता है कि ये भगवान है, यशोदा को पता नहीं था कि ये भगवान है। इनका जो वात्सल्य है ये ऐश्वर्यपूर्ण वात्सल्य है। प्रेम तो बालक का ही है, लेकिन वो जानते हैं कि भगवान है और भगवान मेरे बालक है। यशोदा के साथ में जब भगवान गए तो यशोदा को पता नहीं था ये भगवान है। वो डांटती थी डंडा दिखा के इनको, हाँ बड़ा चटा भी लगाती थी कभी, वो डांटती भी थी और डराती भी थी उसको डंडा दिखा के। थोड़ा अंतर है उसके प्रेम में, उसको माधुर्यमय वात्सल्य कहते हैं, श्रृंगार में वात्सल्य। जो ब्रज में है, ब्रज में भगवान की पहचान भगवान की तरह नहीं होती, अपने बालक की तरह होती है। तो उसके बाद में इन दोनों की स्तुतियों को सुनने के बाद भगवान ने कहा कि हे माता, पुराने जन्म में आप पृष्णी थी और वसुदेव जी आप प्रजापति सुतपा थे, और इस सुतपा और पृष्णी के जन्म में आप दोनों ने संतान के लिए ब्रह्मा जी से तप किया था, अन्न और जल त्याग करके केवल तृण के पत्ते खाकर उन्हें 12,000 साल तपस्या की थी। और उसके बाद में एक मन्वंतर समय बीतने के बाद तपस्या चलती रही तो भगवान ने अवतार लिया और उनको बताया कि मैं आपके पुत्र के रूप में आऊंगा। और उसके बाद में इस तपस्या के फल के अनुसार वसुदेव और देवकी के रूप में उनका जन्म हुआ। उन्होंने बताया कि मैं 3 बार आपके जन्म गर्भ में आ गया हूं। पहले पृष्णी और सुतपा के गर्भ में मैं पृष्णी गर्भ के रूप में आया, फिर जब कश्यप और अदिति का मिलन हुआ तो वामन के रूप में आया, और अभी 3री बार आ रहा हूं आपका पुत्र बन के। हर जन्म में आप मेरी चिरंतन माता है और हर जन्म में मैं आपका चिरंतन पुत्र हूं। फिर वो आदेश करते हैं कि मुझे तुरंत लेकर यहां से जमुना जी पार करके गोकुल में नंद राय के घर पे छोड़ के आओ, और वहां पर एक कन्या का जन्म हुआ है उसको लेकर आओ। योग माया को उस समय आदेश देते हैं कि आप जाकर यशोदा के गर्भ में प्रवेश करो और कन्या के रूप में जन्म ले लो। तो उसी रात में जब भयंकर वर्षा हो रही है वहां पर यशोदा भी प्रसूत होती है, उसकी भी बालिका जन्म लेती है। लेकिन ऐसा कहा गया है कि वो प्रसूति वेदना से या शर्म से इतनी थक जाती है कि उस समय उसको ध्यान रहता नहीं कि क्या हुआ है, बालक हुआ है कि बालिका हुई है। रात के अंधेरे में बहुत घनघोर वर्षा हो रही है तो वो ग्लानी से सो जाती है उसी जगह पर। भगवान की लीला है सब। योग माया के प्रभाव से जब भगवान जन्म लेते हैं तो क्या होता है, सब पहरेदार सो जाते हैं, सबको बहुत भयंकर गहरी नींद आती है। हाँ, सब जाली तो जंजीरे हैं वो टूट जाती है, सब ताले जो है वो अपने आप टूट जाते हैं, इनको जो बांध के रखा है श्रृंखलाओं से वो सब श्रृंखला अपने आप गिर जाती है। और भगवान का दर्शन कर रहे हैं, पूरा कारागृह प्रकाश से भरा हुआ है, इनके आंखों से आनंद अश्रु बह रहे हैं, भगवान उनको तुरंत आदेश देते हैं ले चलो, भगवान को टोकरी में डाल देते हैं। लेकिन उसके पहले भगवान जो ऐश्वर्य संपन्न रूप धारण करके खड़े हैं, बालक बन जाते हैं छोटे से, अचानक गायब हो जाते हैं, छोटे से बालक रहते हुए उनके सामने खड़े जाते हैं। तो उनको उठाते हैं और टोकरी में रखकर सूर्यदेव जी निकलते हैं, सब दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, बहुत जोरों की वर्षा हो रही है, बिजलियां कड़कड़ा रही है आकाश में, मेघ गर्जना कर रहे हैं, घनघोर वर्षा हो रही है, निकल पड़ते हैं बाहर, सब दरवाजे एक बाद एक के बाद एक के बाद, बहुत दरवाजे के अंदर उनका कारागृह होता है, सब खोल के बाहर आते हैं। जमुना जी की तरह जमुना जी में बाढ़ आई होती है, तूफान बाढ़, फिर तो जाना ही है, कैसे अंदर जाएंगे, जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, तो पहले पांव के घुटने तक, फिर कमर तक, फिर छाती तक, फिर मुंह तक डूबने लगते हैं। उतने भी भगवान जो है वो अपना अपने पैर जो है दिव्य चरण कमल जो है वो टोकरे से बाहर निकालते हैं, और जमुना जी जो है भगवान की पटरानी है ना, वो भगवान की नित्य सखी है, वो व्याकुल हो रही है भगवान के चरण छूने के लिए, चरण छूने के लिए ऊपर 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 आ रही है, और वसुदेव डूबते जा रहे हैं, पुकार रहे हैं, कोई लो कोई लो कोई लो, उधर एक घाट है कोई लो घाट, हाँ वो घाट का नाम है कोई लो घाट उसने पुकारा था कोई लो मेरी लाला को लो, कोई मेरी लाला को ले लो, हाँ तो कोई लो घाट नाम हो गया उसका। लेकिन जैसे भगवान के चरण कमल बाहर निकले और जमुना जी उनके सर के ऊपर निकलकर चरणों को स्पर्श करती है, तुरंत रास्ता दे देती है, क्योंकि चरणों को स्पर्श करने के लिए वो व्याकुल थी, ऐसा रास्ता देती है, पीछे से पानी आ रहा है पूरा, और उस समय शेषनाग प्रकट हो जाते हैं और अपने फनों से 1000 फनों से भगवान को छतरी दे देते हैं, और ऐसे पीछे पीछे चलने लगते हैं। आश्रय देगा भगवान पर कोई वर्षा नहीं हो रही है, चरणों का स्पर्श होते जमुना जी रास्ता देती है, और वसुदेव जी पूरा जमुना जी पार करके, बहुत बड़ा पात्र है, अभी का जैसा नहीं है, सिकड़ा हुआ पात्र नहीं, समुद्र जैसा पात्र था, बहुत बड़ा छोड़ा एकदम पूरा निकल जाते हैं रात भर में, और पहुंचते हैं वसुदेव नंद महाराज के घर पे, सब सोए हुए हैं, किसी को पता नहीं क्या हो रहा है, नंद महाराज भी सोए हुए हैं, यशोदा मैया भी सोई हुए हैं, उनके बाजू में उनका बालक जन्म होके बालिका सो भी सो रही है, तो चुपचाप जाकर वो अपने टोकरी से बालक निकाल कर रख देते हैं, वहां से बालिका को उठाते हैं, फिर टोकरी में रखते हैं और फिर चलने लगते हैं, तुरंत ही फिर बाढ़ आई हुई है, लेकिन फिर जमुना जी रास्ता देती है, उनके पीछे पीछे पानी आता है, पूरा पूरा पार करते हुए रात को निकल जाते हैं, दोबारा प्रवेश करते हैं, जैसे एक एक दरवाजे में घुसते हैं वो दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, फिर अगले दरवाजे में, फिर अगले दरवाजे में, जब अपने कारागृह पहुंचते हैं तो सब दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, सब जंजीरें उनके ऊपर चढ़ जाती है अपने आप ही, सब दरवाजे के ताले लग जाते हैं, और बालिका रोती है, और उस रोने की आवाज से सब पहरेदार जग जाते हैं, इतनी घनघोर वर्षा हो रही है, मैं गर्जना कर रहे हैं, कोई उठा नहीं उस समय, ये भगवान की लीला है, भगवान कुछ करना चाहते हैं उसको कोई रोक नहीं सकता है। हाँ बोलेंगे अरे भगवान कितने डरपोक हैं, देखो भाग गए जेल से, भाग गए रात को ही, ये सब लीला है उनकी, उनको बहुत कुछ करना है, केवल कंस को मारना नहीं, अरे कंस को मारना तो एक बहाना था, राक्षसों का आतंक हुआ, उद्दंड हो गए राक्षस, तो बहाना था, अपने भक्तों को दिव्य आनंद देने के लिए, ब्रजवासियों को प्रसन्न करने के लिए, उनको हृदय में आह्लाद भरने के लिए भगवान ने जन्म लिया था। वो तो बाय द वे भगवान ने तो कंस का वध किया ही नहीं है, भगवान के अंदर जो विष्णु है वो प्रकट होकर ये कंसों को सबको तृणावर्त को सबको मारते थे। भगवान तो खेल खेल खेलते, कोई श्रम नहीं करते, कोई मेहनत नहीं करते, जब भी राक्षस आए तो उनका जो ऐश्वर्यमय जो अंश है उनका, वो ऐश्वर्यमय अंश से बल के प्रभाव से उन्होंने राक्षसों का वध कर दिया, लेकिन उन्होंने केवल खेल ही खेला है ब्रज में, वो कोई मेहनत नहीं करते कभी। तो जो प्राथमिक उद्देश्य है उनका वो ब्रजवासियों को आनंद देने का था, और द्वितीय उद्देश्य जो है राक्षसों को मारने का था, भक्तों पर प्रेम करना पहला उद्देश्य, राक्षसों को मारना ये सेकेंडरी उद्देश्य, ये ऐश्वर्यमयी उद्देश्य है, और प्रेममय उद्देश्य क्या है, भक्तों के लिए लीला करना। लौट के आए तो कंस ने खबर पहुंच गई, कंस भाग भाग के आए तो देवकी ने कहा देखो इस बार पुत्र नहीं हुआ है, कन्या हो गई है। कंस जोर से ठहाका मार के हंसता है, अरे देवता लोग भी झूठा झूठ बोलने लगे, आकाशवाणी भी झूठी साबित हो गई, देखो अभी देवता लोग भी झूठा झूठ आकाशवाणी करने लगे, कोई बात नहीं हम तो उसको मारेंगे, तो देवगी कहते हैं अरे मत मारो, ये तो कन्या है, वादा करती हूं कि जब आपके पुत्र से इसका विवाह कर दूंगी। लेकिन नहीं मानता है वो, क्योंकि इसकी मति भ्रष्ट होती है स्वार्थ से, वो उसको कोई अच्छी सलाह काम नहीं करती दिमाग पे उसके, और खींच के लेके जाता है उसको बड़ी क्रूरता से। देवकी बहुत रोती है, एक तो कम से कम रखो मेरे लिए, एक बालिका है, पुत्र भी नहीं है, पुत्र तो मैं दे देती आपको जैसे वादा किया था मेरे पति ने, लेकिन ये पुत्री है, दे दो कम से कम मेरे एक पुत्री तो दे दो। वो नहीं मानता है, ये राक्षसी प्रवृत्ति होती है। राक्षसी प्रवृत्ति के अंदर दया नहीं होती कभी, कोई सद सद अविवेक बुद्धि का विचार नहीं होता है, सार असार बुद्धि का विचार नहीं होता है उसके अंदर, क्या अच्छा है क्या बुरा है, केवल स्वार्थ एक ही उसका विचार होता है, बस अपने हित में क्या है वही सोचना है, चाहे जनता का सबका नाश हो जाए हमको वो करना है। तो छीन की बालिका को उठाता है पटकने के लिए, तो उसके हाथों से बालिका निकल जाती है और आकाश में जाकर सिंह पर बैठी हुई, हाँ सिंह या बाघ पर बैठी हुई, सिंह पर बैठी हुई अष्ट भुजाओं वाली देवता बन जाती है, देवी बन जाती है, सब शस्त्र धारण किए हुए अलंकार से संपन्न तेज पुंज देवी जो है आकाश में प्रकट हो जाती है, जोर से गर्जना करते हुए बात करती है, तो मूर्ख कंस तेरा काल तो जन्म ले चुका है किसी और जगह पर, और तू व्यर्थ ही अपनी बहन को कष्ट दे रहा है, और तेरा दंड जरूर तुम्हें मिलेगा, वो तेरा वध जरूर करेगा। अभी जब इतना सारा प्लानिंग कंस करता है ना, उनको बंद करके जेल में एक एक का वध करता है, इतना सब योजना बना के बाद में भी सबके आंखों के सामने उसका हंसी मजाक होता है ना, कि कोई प्रयास कर रहा है मारने के लिए और जाके आकाश में उठ रहा है, और घोषणा भी हो रही है कि तुम्हारा वध होगा, काल का जन्म भी हो चुका है, एकदम कंस जो है साधु बन जाता है तुरंत, स्वार्थ के लिए वो भी रोने लगता है, पश्चाताप करते हुए दिखाई पड़ता है, बहन जी मुझे माफ करना, मैंने आपको भयंकर अपराध किया है, मुझ जैसा पापी पुरुष संसार में कोई नहीं है, लेकिन मुझे माफ कर देना, मैंने जो भी कुछ किया है हाँ नियंता विधाता के इच्छा के अनुसार किया है अभी जस्टिफाई कर रहा है जो भी कुछ किया है, अरे इन छह बालकों को साथ छह बालकों को तो मरना ही था, इसलिए मेरे हाथों से वो मर गए, ये विधि का विधान था, मैं क्या कर सकता हूँ, विधि ने मुझे निमित्त बना लिया उनका वध करने के लिए ऐसे बात करने लगता है, और मुझे माफ कर लो बहन जी माफ कर लो, और देवकी का हृदय इतना कोमल है माफ कर देती है उसको, कोई बात नहीं, और रिहा कर देते उनको। लेकिन राक्षस का मन जो है वो राक्षस का मन ही होता है, जैसे ही रोता रोता जाता है सभा में अपने अपने मंत्रियों को मिलता है, मंत्री लोग कहते हैं अरे कंस महाराज क्यों रो रहे आप, मुझे ऐसे सब बताते हैं वो, ऐसे ऐसी घोषणा हुई आकाश से देवी के मुख से, ऐसा होगा ऐसा होगा, कोई चिंता की बात नहीं है, आप इतने महान पराक्रमी हो, आप तो इतने पराक्रमी हो, आपके तेज से सब देवता डरते हैं, आप क्यों इतने डर रहे हो, हिम्मत मत हारो, हमारी योजना को सुनो। क्या बोल रहे हैं, तुरंत गोकुल के अंदर जितने नए बालक हो गए सबका वध करने का इंतजाम करो, देखो कैसी योजना बनाते, देखो क्या दिमाग चलता है उनका, हाँ कितना घटिया दिमाग है, मतलब विनाशकारी दिमाग है ये, स्वयं को विनाश की ओर ले जाने वाला दिमाग है। तुरंत पुतना को बुलाते लो जाओ, जितने बालक जन्मे हुए पिछले दिन 7 दिन में सबको मारो, यानी वो आगे की कथा है, कहने का तात्पर्य यह है कि इनका पश्चाताप, इनका प्रेम, इनका आतंक, ये सब स्वार्थ के ऊपर निहित होता है, इनके कहने से जब दोस्ती करते हैं मित्रता करते हैं वो भी स्वार्थ के ऊपर होता है। जब देवासुर संग्राम हुआ बाद में उनका तह हो गया, सुलह हो गई, क्यों हो गई, स्वार्थ के लिए हो गई, चलो हम मिलके उसको मंत्र मंथन करेंगे और अमृत को बांट के लेंगे, मन में प्लान तैयार था जब अमृत निकलेगा हम लोग उसको छीन लेंगे, भाग जाएंगे उसको लेके, देवताओं को वापस मारेंगे, अमृत पिएंगे फिर युद्ध करेंगे उनके साथ, तो दोस्ती भी उनकी छल है, मित्रता भी छल है, युद्ध भी छल है, सब कुछ उनके स्वार्थ के लिए है। और यहां पर अगले दिन सुबह पता चलता है कि पुत्र का जन्म हुआ है, यशोदा को पता ही नहीं, नेक्स्ट डे जब वो लानी से उठ जाती है तब जाकर पुत्र प्राप्ति हुई है, इस प्रकार से उनको बोध होता है, बड़ी खुशियां मनाते हैं, नंदोत्सव मनाते हैं, नंदोत्सव का थोड़ा वर्णन करेंगे। एक बात बताना भूल गया मैं आपको कि जैसे ही भगवान का आविर्भाव हुआ तो वसुदेव ने अपने मन में ही एक लाख अलंकृत गौओं का दान कर दिया ब्राह्मणों को मन में, क्योंकि तो जंगल में जेल में थे, जेल में उनके पास क्या है, लेकिन उनके मन में इच्छा थी कि मेरे घर में बालक का जन्म हुआ है तो जरूर ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। तो मन के अंदर गौओं को सुशोभित और सुलंकृत करके दान कर दिया, ये मानसिक पूजा है। हा? अगर हम गरीब भी है और हमारे पास कोई धन नहीं साधन नहीं है, फिर भी मन से आप 56 भोग भगवान को लोद लगा सकते हो, रत्नों से भरे हुए थाली में लगा सकते हो, मन के लिए कोई बंधन नहीं है। आप गरीब फक्कड़ व्यक्ति होंगे लेकिन मन में आप बढ़िया बढ़िया स्वर्गीय भोग लगा सकते हैं भगवान को, तुलसी रख के बढ़िया से गीत गाकर श्लोक गाकर अर्पण कर सकते हैं, भगवान स्वीकार करते हैं उसको। और भगवान दयालु इतने हैं, कलयुग में मन के पापों को भी वो स्वीकार नहीं करते, मन के पाप कलयुग में माफ कर देते हैं। पिछले युगों में मन में किया हुआ पापी विचार का भी दंड मिलता था, कलयुग में वो भी माफ है, लेकिन जब पापी विचारों को माफ करते हैं सेवा को स्वीकार कर लेते हैं, तो मन में सेवा कर ले तो स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए हमको संकोच नहीं करना चाहिए। हाँ, हमारे मंदिर में जब जन्माष्टमी होती है ना, तो जन्माष्टमी का अभिषेक होने के बाद में पीछे अभी यज्ञ होता है, एक्चुअल यज्ञ होता है छोटा सा, उसमें बहुत व्यंजन होते हैं, बहुत सारी विधियां होती हैं, और एक समय ऐसा होता है कि किसी ब्राह्मण को भगवान की तरफ से गाय दान करनी होती है उस यज्ञ के एक विधि में। तो हमें कई बार बुलाया गया उस ब्राह्मण के रूप में, तो बताया गया आपको गाय दान देना है। तो जब से यज्ञ शुरू हुआ था उनको बताया जा रहा कि अभी आपको एक समय आएगा आपको गाय दान देना है भगवान की तरफ से। तो मन में हम सोच रहे हैं कि काले झुंड होंगे गाय का, एक काले रंग के होंगे, एक झुंड भूरे रंग के होंगे, एक चंद्र गेरुए रंग की होंगी गायें, एक सफेद रंग के झुंड होगा, और एक सफेद हो गए काले धब्बे वाली गायें होंगी, एक काले गाय होंगी सफेद धब्बे वाली, और सफेद गाय काले धब्बे वाली, एक सफेद गाय भूरे रंग धब्बे वाली और भूरे रंग के सफेद धब्बे वाली, कोई तिलक ही नहीं जिसके सर पे तिलक ऑलरेडी विराजमान है, हाँ कोई धौली रंग की है, कोई पीली रंग की है, कोई केसरी रंग के हैं, ऐसे मन में ही झुंड बना लेते थे हम। और फिर वो सभी गायों के सिंग में हम लोग सोने की कैप लगा रहे हैं, पैरों में घुंघरू लगा रहे हैं, ऊपर मखमली चादर लगा रहे हैं, अलंकार गले में सोने की घंटी लगा रहे हैं, हाँ पूंछ पर सोने का अलंकार लगा रहे हैं, पूछ लेके तो आवाज आएगा उसका, पैरों में घुंघरू लगा रहे हैं, इस तरह से सभी मन में ही गायों को अलंकार पहनाकर वस्त्र पहनाकर तिलक लगाकर मन में ब्राह्मण भी तय करके रखे हुए हैं, एक एक ब्राह्मण को एक झुंड दान दे रहे हैं। मन में कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है, एक गाय देना क्यों है, एक स्वार्थ दे दो हर एक ब्राह्मण को क्या प्रॉब्लम है, बहुत सुंदर विधि है। आधे पौने घंटे तक केवल मनन करते थे हम बैठकर, कैसे कैसे कौन से गायों को देना है। वैसे वसुदेव ने 100,000 गौओं को अलंकार पहनकर मन ही मन में दान दे दिया उस समय। और अगले दिन वसुदेव के यहां पर नंदोत्सव हो गया, तो उस समय नंद बाबा ने सभी लोगों को बुलाया, सब ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वचन करवाया, तुरंत विधि पूर्वक जात कर्म करवाया, और ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हुए 100,000 गौओं का दान दिया। उन्होंने एक्चुअली गाय दिया, इन्होंने मन में दिया, उन्होंने प्रत्यक्ष गाय लोगों को दान दिया। उनके उन्होंने क्या किया, एक बहुत सुंदर वर्णन किया गया है कि उन्होंने 7 पर्वत बनाए धान्यों के, 7 पर्वत बनाए, उस पर्वतों पर उन्होंने सोने के गहने रखे, रत्नों के गहने रखे, फूल रखे, और वो 7 जो अन्न के पर्वत थे सब ब्राह्मणों को दान कर दिए उन्होंने। इतना भव्य जन्म मनाते, देखिए मृदंग वीणा शंख बजाते थे, सब लोगों से बजवाए, मंगल गीत गाने लगे ब्राह्मणा ब्राह्मण लोग, और सभी स्त्रियां वहां पर नृत्य करने लगी, पताकाओं से, सोने के कलशों से, चंदोवों से, सुंदर सुंदर डिजाइन से नंद मंदिर जो है वो बहुत सुशोभित हो गया। सब जगह पर सुगंधित जल छिड़काया गया, सब जगह सुंदर फूलों से सजावट किया गया, सभी जगह पर सोने से वर्क लगाया गया, गायों के गलों में सोने की माला दी गई, गलों में सोने की घंटी लगाई गई, पैरों में मंजीर की झंकार होने लगी। इस प्रकार से नंद बाबा ने सभी लोगों को बुलाया, और सभी लोग जो है जितने ग्वाल बाल थे और गोपियां थी, बड़ी गोपियां थी, अलंकार पहनकर भाग भाग के नंद बाबा के घर जाने लगे। ऐसा वर्णन आता है कि वो थोड़े शरीर से स्थूल थी, इसलिए उनको जल्दी जाने में थोड़ा कष्ट हो रहा था, उनके सब अलंकार जो है वो हिलडुल रहे थे, उनकी झनकार सुनाई पड़ रही थी, और सब लोग भाग भाग के सबसे जल्दी कैसे नंद बाबा के घर पहुंचा जाए यशोदा की जी को बधाई देने के लिए। और कुछ सोने के अलंकार लिए हुए हैं, कोई खिलौने लिए हुए हैं, कोई फल लिए हुए हैं, कोई घी लिया हुआ है, किसी ने मक्खन लिया हुआ है, और सब लेकर भाग रहे हैं। और जैसे ही वो आते हैं, पहुंचते नंद भवन पे, सब सखियां जो है वो हल्दी कुमकुम केसर सबके जल बनाकर खड़े हैं और सब पर छिड़क रहे हैं। हम कल दामोदर जी मंदिर में गए थे, वहां पर हल्दी का जल सबके ऊपर डाल रहे थे। बधाई का ये लक्षण है। हाँ, ऐसे रंग होली नहीं खेलना है, लेकिन एक जगह कुमकुम का जल है, एक जगह हल्दी का जल है, एक जगह केसर का जल है, एक जगह सुगंधित जल है, सब छिड़क रहे हैं। हमारे कैसे शादी में होता है ना, वो चांदी के उसमें वो ऐसे छिड़काव करते सबके ऊपर। सबका स्वागत किया गया, सबको चंदन लगाया गया और सबको मिठाई दी गई, सबका स्वागत किया। सब लोग भाग भाग के अंदर गए और वहाँ पल्ले में ठाकुर जी विराजमान थे, और वहाँ पर सब लोगों ने ठाकुर जी को सोने के रत्नों के अलंकार भेंट दिए, फल फूल भेंट दिए, मिठाई भेंट दिया, और सब लोग इतने खुश हो गए। उस समय वाद्य बज रहे थे, गीत गाए जा रहे थे, और आकाश में देवता लोग नृत्य कर रहे थे, फूलों का वर्षाव कर रहे थे, वाद्य बजा रहे थे, गीत गा रहे थे, श्लोक गा रहे थे, सवन कर रहे थे। उस समय नंद बाबा के घर में सब लोग एक दूसरे के ऊपर माखन दही सब फेंकने लगे। ये सब ऐश्वर्य का लक्षण है। जब भगवान का जन्म हुआ, सभी जगह ऐश्वर्य छा गया, कुछ कमी नहीं थी। हजारों लाखों गायों का वहां पर धन संपत्ति था, तो बड़े प्रेम से वो सब गोपियां, सब ग्वाल बाल जो है, किसी को हास में हंसी मजाक कर रहे हैं, हास प्रयास कर रहे हैं, और मक्खन फेंक रहे हैं, खिला रहे हैं, सबको गले मिल रहे हैं, बधाई हो नंद के यहाँ पर बालक का जन्म हुआ है, बड़े समय के बाद में यशोदा बधाई हो, सब गले मिल रहे हैं, आनंद खुशियां मना रहे हैं, और सब बालक के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। उसका सांवला रंग है, उसका प्रकाश सब जगह फैला हुआ है। बलराम जी का भी ऐसा ही हुआ था, जब वो जन्म लिया तो नंद भवन प्रकाश से भर गया। दोबारा एक बार कुछ ही दिन के बाद में नंद भवन प्रकाश से भर गया, उद्भासित हो गया प्रकाश से। सभी लोगों ने, ग्वाल बालों ने नंद महाराज को बधाई दी, गोपियों ने यशोदा जी को बधाई दी, और सब लोगों को बड़े अच्छे अच्छे व्यंजन खिला पिलाकर, अलंकार देकर, बड़ी बड़ी कीमती वस्तुएं भेंट देकर यशोदा मैया ने, नंद महाराज ने नंदोत्सव मनाया अपने पुत्र के जन्म के उपलक्ष्य में। फिर कुछ समय बाद में गर्ग मुनि आते हैं, वसुदेव की तरफ से, मथुरा से आते हैं, सब समझाते हैं उनको, ज़्यादा कुछ बड़ा मत करना, थोड़ा सा छोटा सा सेरेमनी करना, समारंभ जो है वो कार्यक्रम छोटा करना एकदम। तो गौशाला में लेके जाते हैं उनको नंद महाराज, और गर्ग महामुनि को बिठाकर, फिर उनका नामकरण विधि होता है। पहले बलराम जी का नामकरण होता है, फिर कृष्ण भगवान का होता है, फिर की कुंडली बनाते हैं, बताते हैं पिछले जन्म में ये राम थे, किसी जन्म में नरसिंह भगवान थे, किसी जन्म में इसी रूप में आए हैं, किसी जन्म में इस रूप में आए हैं, अब परम पुरुषोत्तम पूर्ण अवतार, पूर्ण अलंकार और पूर्ण ऐश्वर्य के साथ प्रकट हो रहे हैं, और आगे जाके गिरिराज को उठाएंगे, इसका नाम गिरधारी भी होगा, श्याम सुंदर भी होगा, बहुत सारे नाम रखते हैं अपने अपने कला के अनुसार, गुण के अनुसार। और गौशाला में ये बहुत सुंदर जो है उनकी कुंडली बनाकर उनके जीवन के बारे में, चरित्र के बारे में वर्णन होता है, सब लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको फिर भी मन में भय था कि कंस आएगा, कुछ ना कुछ करेगा, आतंक। इस तरह से भगवान का जन्म जो है वो संपन्न हो जाता है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा जेहं पुनर्जन्म न इति मामेति सो अर्जुन। जो भगवान के जन्म की लीला सुनता है और भगवान के अन्य लीलाओं को बारे में सुनता है और समझता है कि भगवान का जन्म और भगवान के कार्य लौकिक नहीं है, साधारण नहीं है, दुनियादारी के जैसा नहीं है, दिव्य है, जो ये समझ जाता है कि भगवान का जन्म और लीला अलौकिक है, दिव्य है, उसको दोबारा इस पृथ्वी पर, इस शरीर में जन्म नहीं लेना पड़ता है। तब सब लोगों को पता होना चाहिए कि भगवान के जन्म की बधाई को सुनना, भगवान के जन्म के वर्णन को सुनना, यह आत्मा के लिए बड़ा पवित्र है। सभी कर्मों को, सभी पापों को नष्ट करने वाला है, सब बंधन को ठुकराने वाला है, तोड़ देने वाला है। न केवल पापों से मुक्ति दिलाएगा, लेकिन मन में कृष्ण भक्ति प्रेम जागरूक करेगा, और न केवल प्रेम जागरूक करेगा, इस जीवन के अंत में हमको जन्म मृत्यु के चक्र से पूर्ण मुक्त करा देगा, भगवान के धाम में ले जाएगा। इतनी शक्ति है इसको, इसलिए उत्सव हम यहाँ मनाते हैं। हाँ, अलग से मनाते हैं, सबको मौका क्यों देते हैं अभिषेक करने का? भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है भगवान को अभिषेक करने से। और जब हम उनके जन्म का गुणगान करते हैं, जन्म का वर्णन करते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, हमारा हमारे इंद्रिय, हमारा मन, हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है, और भगवान के प्रति हमारे मन में आकर्षण और प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इसलिए बड़े चाव से, लगाव से, उत्साह से भगवान के बारे में वर्णन सुनना चाहिए, अनंत बार सुनना चाहिए। ये कथा कोई नई कथा नहीं है, कई बार कह चुके, कई बार सुन चुके हैं, कई लोगों के अनेक टेप यहाँ पर उपलब्ध हैं, बार बार लगातार सुनना चाहिए, तब जाकर ये उत्सव हमारे लिए सफल है। तो भगवान को यहाँ पर जन्म देने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन हमारे लिए जन्म ले रहे हैं, हमारा उद्धार करने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए, हम पर प्रेम जताने के लिए, हमको सही जगह पर ले जाने के लिए वो यहाँ पर जन्म ले रहे हैं, लीला कर रहे हैं हमारे मन को आकर्षित करने के लिए। और ये जन्माष्टमी का उस साल में एक बार आता है, वो हर रोज हो सकता है। कैसे? अगर हम सुबह उठकर भगवान का नाम लेंगे तो हमारे हृदय में भगवान जन्म लेंगे, अवतार लेंगे, जन्माष्टमी रोज मनाएंगे। जो रोज भगवान का जप करते हैं उनके लिए जन्माष्टमी रोज बनती मनी जाती है, मनाई जाती है। इसलिए हमें इस जन्माष्टमी को अगर सही रूप में हमारे जीवन में लाभान्वित कर देना है तो हमको भगवान के नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जैसे ही आप नाम लेंगे, दो चार भक्तों के साथ में बैठ के लेंगे, तुरंत वहां पर भगवान प्रकट हो जाएंगे। यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा, जहां मेरे भक्त बैठकर मेरे पूजा मुझे पुकारते हैं वहीं पर मैं हूँ। हे नारद मुनि, मैं ना वैकुंठ में हूँ ना योगियों के हृदय में हूँ। जहां भी मेरे भक्त जो है, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, कुरूप दिखने वाले, अच्छे दिखने वाले हो, गांव वाले हो, शहर वाले हो, अमीर हो, गरीब हो, अच्छे घट्टे घट्टे शरीर वाले हो या रोगी शरीर वाले हो, देसी हो, विदेशी हो, हाँ कैसे भी हो, बूढ़े हो, जवान हो, या तो परम बूढ़े हो, कैसे भी अवस्था में हो, हर अवस्था में, किसी भी अवस्था में अगर दो चार लोग साथ में आकर मुझे पुकारते हैं मैं वही आता हूँ। दो चार पांच लोग गटर के पास खड़े हो जाते हैं, दलदल के पास जहां पर सोर लोग विष्ठा खा रहे हैं, वहां पर खड़े होकर भी मुझे पुकारते हैं वही मैं पकड़ हो जाता हूँ। वही वैकुंठ है, वही गौलोक है जहां पर मुझे पुकारा जाता है। कमी केवल पुकारने की है, पुकारना चाहिए, वो हाजिर हैं आपकी पुकार सुनने के लिए, बैठे हैं सुनने के लिए, और सुनते भी हैं और प्रतिसाद भी देते हैं। पुकारना चाहिए, मनुष्य को पुकारना सीखना चाहिए। हाँ, ऐसे मशीन की तरह टाइप राइट होता है ना, कटक 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 टाइप करते रहते हैं, उनमें कोई भावना नहीं रहती है। ऐसे पुकारने से लाभ नहीं होता है, कोई भगवान का दिल उसमें हिलता नहीं है, ना आकर्षित होता है। भगवान को हृदय से पुकारना चाहिए, जैसे बालक माँ के लिए पुकारता है, जब भूखा होता है तो रो रो कर माँ को पुकारता है, माँ भाग कर उसको दूध पिलाती है, वैसे व्याकुल होकर पुकारना चाहिए, तड़प होनी चाहिए पुकारने में। जब पुकारेंगे तड़प से दौड़े दौड़े आएंगे, हाँ वेट कर रहे हैं, अपने इंतजार कर रहे हैं कब पुकारेगा ये जीव, मुझे छोड़कर ठोकरे खा रहा है, दर दर की कष्ट भोग रहा है, कब पुकारेगा मुझे, वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, बस पुकारने की देरी है। पुकारने को सीख गए, जीवन धन्य हो गया हमारा। और कोई कला नहीं सीखेंगे, पैसे कमाने की और सभी ऐश्वर्यों को अपने पास करने की और स्त्रियों को पुरुषों को आकर्षित करने की, हाँ भाषण करने की, वो कलाओं को अगर नहीं सीखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कला को सीखो, उनको पुकारना, उनको पुकारने की कला सीखोगे जीवन धन्य हो जाएगा, भगवान से दूर नहीं रहेंगे आप कभी भी। जब पुकारेंगे उनके पास अपने आप को महसूस करेंगे, उनका अस्तित्व को अनुभव करेंगे। ये शक्ति इस नाम के अंदर, न केवल हमारा उद्धार होगा लेकिन प्राणी पक्षी जो जितने भी जंतु हैं, जितने भी जीव हैं, सबको भोजन प्राप्त होगा। ऐसे आज सुबह हमने पढ़ा भागवत में, एक व्यक्ति जब भगवान को पुकारता है, दिल से हृदय से पुकारता है, आकाश में बादल इकट्ठा होते हैं और वर्षा होती है और धान्य और फल फूल उत्पन्न होते हैं पृथ्वी से, और न केवल मनुष्य का, न केवल हमारा, हमारे सगे संबंधियों का, मानव जाति का और प्राणी मात्रों का, सबको अन्न प्राप्त होता है। इसलिए हमको जप करना चाहिए और जप करते हुए और नाम लेते हुए ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जप करने से सभी प्राणी मात्रों को, पापियों को, पुण्य वाले सभी लोगों को अन्न मिलने वाला है। आज इतना कलयुग आगे बढ़ रहा है, इतना कष्ट और लोगों को हो रहा है, लेकिन फिर भी अन्न धान्य मिल रहा है हमको। हम प्राणियों की तरह एक पांव के एक जो ब्रेड का टुकड़ा है उसके ऊपर चार कुत्ते टूट पड़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है हमारा ना। एक थाली हमको दी गई है और चार आदमी उसमें युद्ध कर रहे हैं उस थाली को खाने के लिए, ऐसा तो नहीं हो रहा है। प्राणियों में ऐसा होता है। देखो आप बंदर को एक दे दो, एक कोई रोटी फेंको तो चार बंदर आते हैं टपक के और एक बंदर सबको भगा के ले जाता है। उसको युद्ध करना पड़ता है रोटी के लिए, उसके लिए कितना कष्ट है भोजन प्राप्त करने के लिए। लेकिन हमको कम से कम अभी वो समस्या नहीं आई, आगे आएगी कलयुग में। आगे मनुष्य जो है लड़ लड़ के खाएंगे, जब अन्न समाप्त हो जाएगा तो मनुष्य जो है प्राणियों को मार के खाएंगे, प्राणी समाप्त हो जाएंगे तो मनुष्य मनुष्य को मार के खाएंगे। ये कलयुग का 12वें स्कंद में भागवत में दिया हुआ है क्या होने वाला है। तब तक मत जियो, जब वो समय आएगा तब तक बार बार जन्म लेकर मत रहो इस समय इस दुनिया में, उसके पहले ही पुकारो और मुक्त हो जाओ। जब पुकारेंगे विश्व का भी कल्याण होगा, हमारा भी होगा। और इतना कलयुग बढ़ने पर भी रोटी मिलेगी, वर्षा होती रहेगी, कहीं फल फूल पैदा होते रहेंगे। आज भी हो रहे हैं क्योंकि भक्त लोग पुकार रहे हैं। हाँ, पुष्टि मार्गी है या हरे कृष्ण वाले हैं और कई प्रकार के पंथों के भक्त लोग जो हैं दुनिया भर में भगवान को पुकार रहे हैं। इसलिए अभी भी थोड़ी थोड़ी वर्षा क्यों ना हो, कम हो रही है, हो तो जरूर रही है। सबको भोजन प्राप्त हो रहा है, हम लोग जी सक रहे हैं आराम से। सिर्फ नाम को नहीं छोड़ना, नाम सबसे बड़ा धन है जीवन का। बाकी रुपया डॉलर और पाउंड ये सब धन नहीं है, सब नष्ट होने वाला कागज है खाली, हमको तार नहीं सकता ये धन। केवल नाम को जो पुकारेगा वही अपने आप को तार सकता है। जो आत्मा के सर पर कमाएगा आत्मा के साथ ले जाएगा, जो शरीर के साथ कमाया हुआ है शरीर के साथ नष्ट होते ही वो भी नष्ट हो जाएगा, यही रह जाएगा सब कुछ। इसलिए आत्मा के स्तर पर धन कमाओ, भगवान का नाम लेकर आत्मा की जो संपत्ति है उसको बढ़ाओ, अक्षय खाते में धन बढ़ाओ अपना, जो कोई समय का प्रभाव से छीन नहीं सकता है। तो यही भगवान का जन्म का अर्थ है और क्या है। हम सब लोगों को उनका अवतार जो है वो सफल करना चाहिए अपने लिए। वो सफल तो है ही, कीर्तिमान यशस्वी तो भगवान का अवतार है ही, लेकिन हमारे जीवन में तब सफल होगा जब हम उनके नाम को पुकारेंगे। इसलिए आलस नहीं करना चाहिए पुकारने में, कंजूसी नहीं करनी चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए भगवान के नाम को पुकारने में। चाहे हम डॉक्टर है, कोई ड्राइवर है, कोई नर्स है, कोई घर की औरत है, कोई नौकर है, कोई चपरासी है, कोई लकड़ी में काम करने वाला है, कोई रस्ते में काम करने वाला है, कोई कुल्हाड़ी में काम करने वाला है, कोई डॉक्टर है, कोई राष्ट्रपति है, कोई बात नहीं। भगवान के लिए कोई राष्ट्रपति नहीं है, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई स्त्री है, ना पुरुष है। भगवान के लिए सब प्रिय जीव हैं, उनके अंश हैं सब लोग। बड़े पद वाला पुकारेगा तो भी सुनेंगे और चपरासी पुकारेगा तो भी सुनेंगे, गरीब का भी सुनेंगे और धनी का भी सुनेंगे। जो पुकारेगा उसकी सुनेंगे और उसका कल्याण होगा। ये भेदभाव तो हम लोग करते हैं, भगवान को कोई भेदभाव नहीं है, ना मृत्यु को भेदभाव है। जब मृत्यु आती है तो बोलते नहीं राष्ट्रपति है इसको अलग से ले जाओ, हाँ ये चपरासी है उसको अलग से ले जाओ, ऐसा होता है क्या। मृत्यु के सामने सब एक होते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता है। वैसे भगवान की नजर में कोई भेदभाव नहीं है, जो भी उनको पुकारेगा किसी भी अवस्था में पुकारेगा उनकी सुनेंगे और उसका उद्धार करेंगे। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो हम लोग जानवर बनेंगे अगली बार, कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, कोई बुद्धि नहीं होगी, केवल आहार निद्रा भय और मैथुन सेक्स करने में लग जाएंगे और तड़पते रहेंगे बार बार जन्म जन्मांतर तक। मनुष्य शरीर मिला है उसका सार्थक होना जरूरी है। सार्थक करने के लिए कलयुग में कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं, कोई ज्ञान कोई धर्म कांड करने की जरूरत नहीं है, कोई कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है, कोई योग करने की जरूरत नहीं है, कोई सिद्धि प्राप्त करने की जरूरत नहीं, कोई परिवार छोड़कर हिमालय में जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जहां पर हो वहीं रहो, जो कार्य कर रहे हो वहीं करते रहो, जो कर्तव्य कर रहे हो उसको निभाते रहो, लेकिन भगवान का नाम लो। तो हमारा परिवार, हमारा प्रोफेशन, हमारा व्यवसाय सब सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबको बधाई है भगवान के जन्म के लिए। हाँ, नंदोत्सव मनाया जा रहा है, सबको बधाई है, सब लोग आनंद लो अपने जीवन को धन्य करो। जय जय श्री राधे श्याम।